12 और 13 का अनुवाद इकट्ठा है। बाद में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाली कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई और उनके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि के वीर्य से रेणुका की कुक्षी से वसुमान आदि कई पुत्र हुए, जिनमें से राम या परशुराम सबसे छोटा था। 14वें का अनुवाद है। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वसुदेव के विख्यात अवतार मानते हैं, जिसने कीर्तकार्त वीर्य के वंश का विनाश किया। परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। अब ये हम पढ़ेंगे 15वां। द्रप्तम क्षत्रम भुवो भारम अब्रह्मण्य मनी नशात रजस्तम व्रतमहान फल्गुन्यापि करते हंसी दृप्तम क्षत्रम भुवो भारम ब्रह्मण्य मनी नशात रजस्तमो व्रतम अहान फलगुने अपि करते हसी दृप्तम क्षत्रम भुवो भारम ब्रह्मण्यामनी नशात रजस्तमो व्रतम अहान फलगुण्य अपि करते हसी। शब्दार्थ दृप्ताम अत्यंत ग्रवित, क्षत्राम क्षत्रियों को, भुवा पृथ्वी के, भारम भार को, अब्रह्मण्य पापी ब्राह्मणों के बनाए धार्मिक नियमों की परवाह न करने वाले, अनिनाशात निकाल दिया या विनष्ट कर दिया, रज तमा रजो तथा तमो गुणों से, वृता ढके हुए, अहान मार डाला, फलगुनी बहुत बड़े नहीं, अपि यद्यपि, कृते किया गया, अहसी अपराध। अनुवाद। जब राजवंश रजो तथा तमो गुणों के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की परवाह न करने लगा, तो परशुराम ने उन सबको मार डाला, यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे, किंतु धरती का भार कम करने के लिए उन्होंने उन्हें मार डाला। तात्पर्य शिलप्रभुपाद जी के द्वारा। शिलप्रभुपाद की क्षत्रियों का या शासक वर्ग को महान ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार संसार पर शासन करना चाहिए। जो ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों की अवहेलना करने लगता है, त्यों ही वह पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, रजस तमो व्रतम भारम अब्रह्मण्यम। जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित हो जाता है, तो वह विश्व के लिए भार बन जाता है और तब उसे महती शक्ति द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए। हम आधुनिक इतिहास में स्पष्ट देखते हैं कि राजतंत्रों की विभिन्न क्रांतियों ने विनिष्ट किया है किंतु दुर्भाग्यवश राजतंत्रों के विनाश के बाद तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों को का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी मतलब शाबाश। यद्यपि राजतंत्रों को रजो तथा तमो गुणों ने परास्त कर दिया है और विश्व से उनका लोप हो गया है, किंतु विश्व के वासी अब भी दुखी हैं, क्योंकि यद्यपि इन राजाओं के गुण तमोगुण के कारण क्षीण हो गए थे, इनका स्थान व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग के लोगों ने ले लिया है जो और भी गिरे हुए हैं। जब सरकार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं, तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। क्या आपने सुना? क्या कई लोग सुनते नहीं है ना? आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश, आगे आगे बैठो, सुनो। बहुत भाग्यशाली हो, भागवत कक्षा में आए हो आप, बहुत भाग्यशाली हो। दोबारा सुनाओ, शाबाश, सुनो। जब सरकार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं, तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। अतएव प्राचीन काल में जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों के स्तर पर पतित हो गया, तो परशुराम जैसे क्षत्रिय तुल्य ब्राह्मणों ने उनका 21 बार वध किया। किसने? वेरी गुड। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 12वां स्कंद दूसरा अध्याय 13 कहा गया है, कलयुग में 12वें स्कंद में पहले के अध्यायों में, पहले लगभग 6 अध्यायों में भविष्यवाणी की गई है कलयुग में क्या होगा। जब लिखा था तब कलयुग नहीं था, तो उसमें क्या लिखा है, दस्यु प्रायेशु राजसु, शासक वर्ग लुटेरों की तरह होगा, क्योंकि सरकारी राजकाज में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों का प्राधान्य हो जाएगा। देख रहे हो, ये सच बात है ना, कितनी एक्यूरेट लिखी हुई है। वे धार्मिक नियमों तथा ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित विधि विधानों की अवहेलना करते हुए नागरिकों की संपत्ति को मनमाना ढंग से लूटने का प्रयास करेंगे। सच बात है या कोई इससे डिसएग्री करता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रूपा जी, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भागवतम में कहा हुआ है, जैसा कि फिरोज श्लोक एक उद्धृत कर रहे हैं, जैसा कि श्री भागवतम के 12वें स्कंद के पहले अध्याय और 40वें श्लोक में कहा आया है, असंस्कृता क्रिया हीना रजसा तमा तमसा व्रता प्रजास्ते भक्ष्यन्ति मलेच्छा राजन्य रूपिणः। अशुद्ध होने, मानव कर्तव्य को ठीक से न करने एवं रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होने के कारण अशुद्ध लोग, अशुद्ध लोग मतलब मलेच्छ, सरकारी कर्मचारी बनकर, राजन्य रूपिणा सरकारी कर्मचारी बनकर नागरिकों को निगल जाएंगे, खा जाएंगे नागरिकों को। यही है प्रजास्ते भक्ष्य, भक्ष्य मतलब खा जाएंगे। एक अन्य स्थान पर श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ये 12वें स्कंद का ही दूसरे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है, जिसमें जिसका अनुवाद है, जैसा कि भगवद गीता में बतलाया गया है, मानव समाज 4 विभागों में बटा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग श, किंतु यदि इस तंत्र की अवहेलना की जाती है और समाज के गुण एवं विभागों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसका परिणाम होगा भ्रम विट क्षत्र शूद्रा नाम यो बलि भविता नृपा। मतलब अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की तथाकथित जाति प्रथा निरर्थक होगी, फलस्वरूप जो भी येन केन प्राकरेण शक्तिशाली होगा वही राजा या राष्ट्रपति बन जाएगा, और इस प्रकार प्रजा को इतना सताया जाएगा कि लोग घर बार छोड़कर जंगल चले जाएंगे, शांति गिरी काननम, जिससे वे उन सरकारी अफसरों के उत्पीड़न से बच सकें जो निर्दय एवं लुटेरों जैसी वृत्ति के हैं, है ना? इसलिए प्रजा को कृष्ण भावना अमृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का शब्द अवतार है ना? क्या कहाँ चले गए, कहाँ ले जाता है मन हमें पकड़ के, देखो कैसा मन है हमारा, कहाँ चले गए, क्या कहा? वो तो उससे तो कहीं आगे आ गए हम, वो तो जब आप आंख बंद नहीं हुई थी उससे पहले सुना। अभी हम प्रभुपाद जी सोल्यूशन बता रहे हैं, आप समस्या का तो हो गया, प्रभुपाद जी सोल्यूशन क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन है इसीलिए प्रजा को कृष्ण भावना आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का शब्द अवतार है, यह है परशुराम। इसमें परशुराम कौन है, ये है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अब अपने पवित्र नाम के अवतार रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं, उस समय परशुराम के रूप में प्रकट हुए, इस समय कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव जब प्रजा कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, तभी वह अच्छी सरकार, अच्छा समाज, पूर्ण जीवन तथा भव बंधन से मुक्ति की आशा रख सकती है। जय श्रील प्रभुपाद की। क्या क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा। तो भागवतम पुराण जो है यही कृष्ण है ना। पहले स्कंद में आता है कि जैसे नैमिषारण्य ने जब ऋषि इकट्ठे हुए, अभी तो आप नैमिषारण्य होके आए हो है ना, तो नैमिषारण्य में शुनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान तो अब अपने धाम चले गए हैं, तो अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है, धर्म भी तो चला गया, भगवान चले गए धर्म भी चले गया। तो उन्होंने उत्तर दिया सुत गोस्वामी ने कि नहीं, अब भगवान जो है ये भागवतम में है, कृष्ण में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है। तब हम नित्य भागवत सेवे, जब नित्य हम भागवत की सेवा करते हैं, नित्य भागवतम सुनते हैं, तो सारे ये रजो तमो गुण सब चले जाते हैं, जिसमें यहाँ पे वर्णन हुआ है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब वापिस आए प्रचार करके, इस्कॉन की स्थापना हो गई, बहुत सारे मंदिर भी खुल गए। हरे कृष्णा, रात को नहीं सो पाए क्या, हैं रात को क्या कर, कुछ ज्यादा काम करवाया इनसे, हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो हैवी ड्यूटी ना, पास आओ प्रभु जी, आपको तो संग मिलना चाहिए इधर, ये लो बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, आप तो सबसे बड़ी सेवा करते हो, ज्यादा कुछ कर रहे हो आप। तो जब प्रभुपाद जी वापिस आए, आचार्य बन गए, तो जगत आचार्य सारी दुनिया जानती थी, सारी दुनिया जानती थी उनको, अपने शिष्यों को लेके आए, तो उनको मौका मिला इंदिरा गांधी को मिलने का, 1975 की बात है, 1975 में इंदिरा गांधी को उनसे अपॉइंटमेंट मिली, इंदिरा गांधी थी तब, वो इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर थी उस वक्त, आप तो पता नहीं, कई लोग जानते हैं, जो बड़े होंगे वो जानते होंगे है ना प्रभु जी, धर्मवीर प्रभु नहीं, कितने साल उन्होंने राज किया है, इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, बहुत पावरफुल। तो प्रभुपाद जी उनको मिलने गए, और जब मिलने गए तो उस समय ही ऐसा था कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसकी हत्या कर दी थी टेररिस्ट ने, तो इधर भी खतरा था कि अब सेकंड नंबर इंदिरा गांधी का है, पहले उसकी हत्या की है, अब आपका नंबर है, ये चल रहा था, तो बड़ी सिक्योरिटी टाइट थी। तो प्रभुपाद जी तो अपने शिष्यों के साथ गए, लेकिन किसी को एंटर नहीं होने दिया, बाकी सबको, क्योंकि फॉरनर्स थे, तो उनको तो डर वैसे ही लगा होता फॉरनर से, उनको सबको रोक लिया, सिर्फ प्रभुपाद जी को जाने दिया। वो प्रभुपाद जी को भी एक खास कार में लेके गए, और मतलब पता ना लगे कैसे, और फिर वहीं उसके घर के आगे जाके दरवाजा खोला। तो जब आई इंदिरा गांधी, बड़े सम्मान से मिली, तो वो बड़ी चिंतित थी, वो चिंतित थी, साफ प्रभुपाद जी को नजर आ रहा था कि वो डरी हुई है। तो उसने बोला भी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वो शायद कैंसिल ही कर देती मीटिंग, लेकिन उसको ऐसा था कि भाई मैंने एक बार वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो वो मिली मतलब, लेकिन ज़्यादा वो समय नहीं देना चाह रही थी। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है एक जाने से पहले एक लिस्ट बना के गए थे कि ये पॉइंट्स जो है मैं इंदिरा गांधी के सामने रखूंगा। याद है किसी को? लीलामृत तो पढ़ी होगी सबने, आपको याद है? वेरी गुड, बोलो, बहुत अच्छा, दो तीन भी याद है तो बहुत याद है, वेरी गुड। पहला नंबर उन्होंने यही, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं प्रचारक इंडिया में, 1975 में कोई प्रचारक नहीं था इंडियन, और दूर दूर तक कोई नजर आता था, इंडियन कोई भी नजर आता था, प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि 500 जो फॉरेनर्स हैं उनको तुम वीजा दो परमानेंट। और हाँ, एमपी जो है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनिशिएटेड ब्राह्मण हो, हरी नाम नहीं, ब्राह्मण, वो ये धागा डला हुआ ब्राह्मण हो, सेकेंड इनिशिएटेड, सारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो ये है, ये ब्राह्मण असली ब्राह्मण है जो रूलर को शास्त्रों के मुताबिक बोलना जानते हैं। फिर और किसी को याद है? हाँ, पार्लियामेंट में कीर्तन हो, आरती अटेंड करें सारे के सारे, और उस समय संजय का बहुत बोलबाला था, संजय गांधी जिसकी वो प्लेन उसमें डेथ होगी क्रैश में, उन्होंने उसको राजा बना दो, संजय को राजा बना दो, आप क्वीन बनो उसको राजा बना दो, क्योंकि प्रोबत चाहते थे राजतंत्र हो, लोकतंत्र तो प्रोबत जी कहते थे डेमोक्रेसी मीन्स डेमन क्रेजी, इसमें क्या है कि नहीं, सारे जो हैं चोर हैं सबसे बड़े चोर को राजा बना देंगे वो, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? आप किसी को चुनते हो तो अगर सारे चोर हैं तो चोर को तो चुनेंगे, पुलिस वाले को चुनेंगे, मान लो 100 चोर हैं वो पुलिस वाले को चुनेंगे अपना राजा, चोर को तो सबसे बड़ा जो चोर है उसको चुनेंगे जो उनकी सहायता करेगा, तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते डेमन क्रेजी है, तो राजा राजतंत्र चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि कम से कम वो राजा अच्छे थे, चाहे वो तमोगुण और रजोगुण से ग्रस्त हो चुके थे, लेकिन वो फिर भी अच्छे थे आजकल के उनसे, थर्ड ग्रेड जो व्यापारी आ गए अभी तो, है ना, क्षत्रिय तो है नहीं, व्यापारी और शूद्र आ गए अभी तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि काउ स्लॉटर बंद होना चाहिए, स्लॉटर हाउसेस बंद होने चाहिए, खास तौर से काउ स्लॉटर, गाय को मारना इतना बड़ा ये हमारी संस्कृति के लिए खराब है कि अब मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसी कारण से आज जो है लोगों को समझ ही नहीं आती बात, कहां समझ आती है, आप तो जाते हो प्रचार पे जाते हो, समझ आती है, ऐसे नहीं लगता कि जैसे उनके यहां पे दिमाग ना होके जैसे कोई कूड़ा करकट रख दिया है, कभी ऐसे महसूस नहीं होता जब आप उनसे बात कर रहे होते हो कि यहां जैसे ब्रेन है ही नहीं, सच बताओ, अनुभव बताओ जो प्रचारक है, इधर ब्रेन ही नहीं है, जैसे कूड़ा करकट रखा, समझ नहीं आ रही, सिंपल बात नहीं समझ आती उनको, क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है गाय का दूध अगर हम पिएंगे तभी हमारे ब्रेन में ऐसे तंतु विकसित होंगे जो ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है सूक्ष्म उसको हम ग्रहण कर सके, नहीं तो समझ ही नहीं आता। या लोग कहते हैं आपका जो बातें हैं आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, हम इसको अपना ही नहीं सकते, कई लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छे हो आप, तो हमारी पकड़ से बाहर हो, टू गुड कहते हैं ऐसे लोग, क्या वो बड़े अजीबोगरीब तरीके देखते हैं, ऐसे सड़कों में नाचते रहते हैं, क्या है ये, अच्छा भला IIT ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट, ये क्या भगवे कपड़े, साधु भाव जवानी में ही वो कुछ देखा ही नहीं है, भगवे कपड़े बांट के डाल के वो सड़कों में किताबें बांटता फिर रहा है, ये क्या है भैया, ये IIT इसलिए की थी क्या, किताबें बांटने के लिए तो कोई भी बांट सकता है, किताबें ही बांटनी है तुमने, ये तो कोई भी कर सकता है, या घंटी बजानी है कोई भी बजा सकता है, तो घंटी बजानी है यहाँ पे तो अनपढ़ भी बजा सकता है, इसमें इतनी IIT ग्रेजुएट करने की क्या जरूरत थी, ऐसे लोगों को समझ नहीं आती बात। तो इसीलिए गाय का होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गाय को हम सुरक्षा प्रदान करें, वो मां है, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये बंद होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने कहा एक ही, सारी दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए। देखो कैसे बोल्डली कह रहे हैं, एक धर्म होना चाहिए सिर्फ, कौन सा, जो भागवतम और भगवद गीता के ऊपर आधारित है, बस दो किताबें होनी चाहिए, भागवतम और भगवद गीता, एक। ऐसे 10 पॉइंट लिखे थे प्रभुपाद जी ने, लेकिन प्रभुपाद जी सारे पॉइंट्स नहीं कर पाए क्योंकि उस समय उसकी स्थिति ऐसी थी इंदिरा गांधी की, तो हैं 10 पॉइंट्स हैं, 3 रह गए हैं अभी। हाँ नहीं नहीं मैं नहीं बोल पाया, 3 या प्रभुपाद लीलामृत में नहीं 3, हाँ तो 3 रह गए हैं, वो और हैं स्लॉटर हाउस बंद होने चाहिए, और जो ये मीट खाना है पब्लिक नहीं होना चाहिए, आप पब्लिक में जाके रेस्टोरेंट में जाके मीट नहीं खा सकते, खाना तो घर में खाओ। ये जो है ये भी एक बहुत, मतलब आप खुले आम, जैसे अगर आपने मारना है, अपने बच्चों को मारना ही है तो सबके सामने तो मत मारो, सबके सामने गला काट रहे हो, आप बच्चे हैं आपके, ये पशु क्या है, बच्चों की तरह है आपके, इतनी देखो अजीबोगरीब संस्कृति है कि जो मनुष्य है वो तो प्रजा है, राजा कहता है ये मेरी प्रजा है, ये मनुष्य है, और जो बेचारा जानवर इस तुम्हारे देश में पैदा हुआ है वो प्रजा नहीं है, वो भी तो प्रजा है, वो भी तो आपके संरक्षण का हकदार है, वो आपके जन इंडिया में पैदा हुआ है, वो इंडियन नहीं है, आप इंडिया में पैदा हुए इसलिए तो इंडियन हो, इसलिए इंडियन हो, पैदा हुए नहीं, कौन इंडियन है, जो इंडिया में पैदा होता है इंडियन ऑटोमेटिकली, थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है, नहीं मैं तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं, मैं तो अमेरिकन सिटीजनशिप लेना चाहता हूं, मिलेगी आपको, पैदा इंडिया में हुआ अमेरिकन कैसे बन जाओगे, तो जो गाय पैदा हुई है इंडिया में वो इंडियन नहीं है, उसकी सिटीजनशिप नहीं है इंडियन, कितना मूर्ख था, कितने पागल, क्योंकि यहां पे कूड़ा करकट भरा हुआ है सारा। और प्रभुपाद जी ने कहा कि और क्या पॉइंट रह गया, 10 पॉइंट थे, हाँ, यस बोल दिया, ये वाला पॉइंट तो बोल दिया, मंदिर में आना चाहिए उनको, हाँ मंदिर में आना चाहिए और वहां पे भी कीर्तन होना चाहिए, हाँ यस। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो, एक दो पॉइंट और हैं इसी तरह से रिलेटेड ही हैं वो भी। और तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमें भी जब हमें मौका लगे, जब भी हमें मौका लगे ऐसे लोगों से मिलने का जो शासक अधिकारी हैं, तो हमें बोलना चाहिए। और अभी देखो जैसे अब इलेक्शन आ रहे हैं, है ना, तो हमें वोट देना चाहिए, ये नहीं कि हमें क्या लेना देना। देखो प्रभुपाद जी क्यों फिर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्यों लिख रहे हैं कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का, क्योंकि ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको सही रास्ते पे लाएं। तो जो कथा है, कथा तो आप जानते ही हो, कथा तो काफी दिनों से चल रही है, किसी को ध्यान है, कोई बताएगा कहां से कहां कथा चल रही है, याद है, रोज सुनते हैं क्लास, बताओ कुछ क्या कथा चल रही है, मार दिया उनको है, आगे आएगा ना वो, तो अभी काम आ रहा है, आगे चल रहे हो एडवांस पार्टी। तो अभी तो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे कि गादी है ना, गादी ये वंश, ये वैवस्वत मनु का वंश चल रहा है सारा, भागवतम में मनुओं की कथा है, सारी सारी कथाएं जो हैं मनुओं की हैं, है ना। तो पहले सबसे पहले स्वयंभू मनु, जो सबसे पहले पहले मनु हैं, उनकी कथाएं हैं सारी, तो देवहूति पढ़ा हमने, देवहूति, ध्रुव महाराज, सारे जो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, है ना, तीनों तीन कन्याएं थी, देवहूति, प्रसूति और आकुति, सबकी कथाएं, उत्थान पात सब पढ़ चुके हैं। अब जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं वैवस्वत मुनु का, उनके वंश जा रहे हैं सारे। तो गादी, गादी आता है तो गादी की जो बेटी है वो है कौन, सत्यवती, गादी राजा की बेटी है सत्यवती, राजकुमारी है। तो उनके प्रति कौन आकर्षित हो जाते हैं, वेरी गुड। तो वो क्या शर्त रखते हैं, 1000, देखो क्या शर्त रखते हैं, 1000 घोड़े लेके आओ और वो ऐसे शाइन कर रहे हो जैसे चंद्रमा, चंद्रमा जैसे उजले हो, चंद्रमा चंद्रमुखी है ना, ऐसे चंद्रमा जैसे उजले घोड़े हो, लेकिन एक उनका कान जो है काला हो। तो कैसी शर्त रखती बताओ, कहां से ढूंढोगे, आपने देखा, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक जीवन में ऐसा घोड़ा, आपने देखा क्या, मतलब समझ नहीं आ रही कैसी उन्होंने रख दी, क्या शर्त रख दी, आपने देखा माता जी कहां मिलते हैं ऐसे कि पूरा उजला हो, एक ही कान काला हो उसका, ले आए वो, क्योंकि रुचिक ऋषि को इतनी पसंद थी सत्यवती, ले आए वरुण के पास गए, ले आए 1000 घोड़े ले आए, ऐसे ऋषि हुआ करते थे, ये पावर है, देखो पावर देखो ना ऋषियों की। तो अगर हम भी भगवान गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो ये पावर आती है, ऐसी बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हिजोलनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देखो, है ना, प्रभुपाद जी ने कहा दिल्ली में एक बड़ा मंदिर होना चाहिए और 12 या 13 ऐसे बोले छोटे छोटे मंदिर होने चाहिए सारी दिल्ली में फैले हुए। ये प्रभुपाद जी तब कह रहे हैं जब दिल्ली में कोई मंदिर, कोई जगह ही नहीं है उनके पास, नहीं समझे, ये उस समय की बात है जब हमारे पास दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, भक्त लोग पता है कहां रहते थे, ऐसे किसी की नाई की दुकान पे रह गए, कोई पार्किंग में सो गए, कुछ था ही नहीं उस वक्त। श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, यहां से शुरुआत हुई है दिल्ली आंदोलन की, दिल्ली यात्रा की। दिल्ली में जो आप बैठे हो, दिल्ली की राजधानी, तो जब लोग आए बाहर से, जब लोग आए तो बड़े हैरान होते थे, हम जा रहे हैं दिल्ली, भारत की कैपिटल दिल्ली में, तो इस्कॉन का कोई सेंटर देखने, उस सेंटर छोटा सा एक कमरा, बंगाली मार्केट में छोटा सा कमरा, है ना। तो लेकिन शिला हिजोलनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, पूर्ण रूप से पकड़े हुए हैं चरण, इतनी शक्ति मिली उन्होंने, देखो आज वो सत्य है, आज वो सत्य है। जब आपका रोहिणी का मंदिर बन रहा है, सारे प्रभुपाद जी ने जो इच्छा प्रकट की उनके शिष्यों ने पूरी कर दी। तो इसी तरह से ये होती है ना, ये शक्ति ऐसा नहीं है कि कहानियां नहीं है। लोग जो मूर्ख हैं, जिनके यहाँ कूड़ा करकट भरा हुआ है, वो कहते हैं तो माइथोलॉजी है, कहानियां हैं, और जो कहानियां हैं उनको सच मानते हैं, है ना। डोनाल्ड डक तो है नहीं, डोनाल्ड डक, बार्बे, बार्बी क्वीन नहीं, है ना, आपकी बेटी के पास भी होगी या लेके दी होगी, बार्बी, बार्बी डॉल, बार्बी डॉल की ये किचन है, ये इसका वो है वैनिटी बॉक्स है, ये इसका ये अलमारी में कपड़े हैं, बार्बी डॉल जैसे रियल है बार्बी डॉल, डोनाल्ड डक, स्पाइडरमैन, ये रियल है। और ये जो है हमारे नरसिंह भगवान, ये तो माइथोलॉजी, ऐसे होते हैं कोई नरसिंह भगवान, आधा शरीर शेर का, ये क्या, ये तो माइथोलॉजी है, ये है कूड़ा करकट, इसके निकालना है। इसी के कारण फिर आपको मुसीबतें, इसके कारण आप पागल हो जाते हो, फिर पागलों की तरह बिहेव करते हो, देखा ना कितनी पागलपन है सोसाइटी में, देखते नहीं हो, ये देखते हैं इसी कूड़े करकट, इसको निकालना है, ये निकालना से, ये अगर हम डालेंगे नित्यम भागवत सेवया, ये करेंगे तो फिर हमें ये हमारे साथ भी घटना घटेगी होगी, हम भी कर सकते हैं ये कार्य, मुश्किल कार्य नहीं है। भगवान अनलिमिटेड है, भगवान के साथ जब आप जुड़ते हो तो आप भी अनलिमिटेड हो जाते हो। तो इस तरह से जब उन्होंने घोड़े ला के दिए, फिर उनकी शादी हुई है सत्यवती, फिर उन्होंने जो है आपको पता है कि वो जब पुत्र प्राप्ति करना चाहते थे तो उन्होंने यज्ञ किया है। तो जब सत्यवती कहीं चल रहा था तो माँ भी आ गई उनकी, माँ कहती है मुझे भी चाहिए बेटा, कंपटीशन, मेरी बेटी के हो रहा है, मेरे नहीं है बेटा, मुझे भी दे दे। दामाद को प्रार्थना करती है मुझे भी दे दो एक बेटा। तो दामाद ने कहा चलो ठीक है, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो यज्ञ में जो वो हुआ निकला, वो ओब्लेशन चारू क्या वो जो है ना, वो जो निकलता है वो निकला, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी जरा स्नान करने जा रहा हूं। वो स्नान करने गए तो उन्होंने पी लिया, उन्होंने समझा ये इसका है, माँ ने समझा ये इसका है सत्यवती का, ये मेरा है। तो माँ ने कहा तेरे को तो अच्छा ही देखे गया होगा, वो तेरा पति है ना, पति का ज्यादा झुकाव तो पत्नी की तरह होता है, सास की थोड़ा होता है, सास का थोड़ा ध्यान रखता है, तो पत्नी को तेरे को अच्छा दिया, तू मुझे दे दे मैं तुझे दे देती हूँ। वो पी गए, उसके आने से पहले ही पी गए। तो जब आए जन्मदाग्नि, जब ऋचिक ऋषि आए तो बड़ा गुस्सा आया उनको, बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा पीने के लिए कहा था तुम्हें, मेरे से पूछे बिना ही पी गए तुम, ये तो उसके लिए था, उसके लिए था, बड़ा नाश कर दिया, बहुत गलत काम कर दिया तुमने। तो इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कोई भी कार्य करें हम अपने जो बड़े हैं उनसे हम पूछ लें, अपना दिमाग नहीं लगाएं, स्पेकुलेट नहीं करें, हम स्पेकुलेट बहुत सी चीजें करते हैं। मन जो है इतना दुष्ट है, वो चीजें पकड़ लेगा जो हमें अच्छी लगती हैं, शास्त्रों में से पकड़ लेगा, और कितने कितने हम रीजन देते हैं है ना। लेकिन हमें समर्पण करना चाहिए, और जो हमें हमारे वरिष्ठ हमारे गुरु बताते हैं उसको मानना चाहिए, ये है आगे बढ़ने की रीति। तो फिर उसको कहा कि देखो तेरा पुत्र जो है बहुत बड़ा घोर क्षत्रिय होगा, तुम ब्राह्मणों बेटा क्षत्रिय होगा। तो घबरा गई, तो फिर उन्होंने जब बहुत सेवा की उनकी, बहुत उसको पता तो लग गया था गलती हो गई है, सब सेवा की, तो उसने कहा ठीक है तेरा बेटा तो नहीं होगा लेकिन तेरे बेटे का बेटा तो जरूर होगा, पोस्टपोन कर दिया। तो ठीक है, तो फिर आपको पता है नींद आ गई इनको, प्रभु जी आपको क्यों नींद आ गई, सारी कथा पता है आपको, रिपीट हो रही है क्या है, आप भी आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आगे पास में आओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। क्या नाम है आपका है, लाल, क्या नाम है, लाल, लाल भी वो कृष्ण भी और तिवारी भी, तीन तीन विभूतियां, तिवारी का क्या मतलब, तिवारी का मतलब तीनों वेदों को जानने वाला, वो लाल, लाल भगवान तो है ही लाल, लाल भी है, कृष्ण भी हो, तिवारी भी हो, फिर पीछे बैठे क्यों सो रहे हो, कंठी माला भी धारण किया है, तिलक भी लगाया है, फिर क्या कमी कहां है। तो क्या क्या चर्चा चल रही थी, कितनी इंटरेस्टिंग कथा है, क्या इंटरेस्टिंग कथा है, नहीं कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी रोचक कथा है ये, जन्मादग्नि ऋषि परशुराम, क्या रोचक कथा है, कहां चल रही थी, कहां तक पहुंचे हम, कुछ याद है, हाँ बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, उसके बाद नींद लगी, शाबाश, फिर वेरी गुड, फिर उसके बाद मैं सुनानी है, शाबाश, थैंक यू, सुन रहे हो आप, वेरी गुड। तो फिर जब इनका बेटा कौन हुआ, फिर ऋषिक मुनि का पैदा हुआ, जन्मादग्नि है, जन्मादग्नि ऋषि जो है ये सब ऋषियों में आते हैं, जो परशुराम के पिता है ऑर्डिनरी नहीं है, सप्त ऋषियों में एक ऋषि कौन है, जन्मादग्नि ऋषि, बहुत कूल थे। एक बार धर्म ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूं, और धर्म जो है क्रोध में बदल गए, क्रोध में बदल के इनके हृदय में घुस गए। लेकिन इनको फिर भी क्रोध नहीं आया, फिर भी ये शांत रहे, और धर्म ने फिर इनको आशीर्वाद दिया, मतलब वो लेसन, मतलब इतने कूल थे, का बेटा दुर्वासा मुनि इतना वो था, दुर्वासा कह रहा हूँ जो परशुराम जी, परशुराम जी जो हैं वो बहुत क्रोधित थे, बहुत। एक बार जब इतने, और लेकिन पिता के प्रति कितने वो थे। एक बार क्या हुआ कि जन्मादग्नि की जो पत्नी है रेणुका, वो जब जन्मादग्नि जी वो कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं सैक्रिफाइस, तो उन्होंने इनको भेजा के जाओ वहाँ जल लेके आओ, जल की गंगा जल लेके आओ। तो जब ये लेने गई तो इन्होंने एक गंधर्व को देखा, गंधर्व आए हुए थे वहाँ। पहले ऐसे होता था कि ये लोग देवी देवता लोग गंधर्व लोग इधर पृथ्वी लोक में भी आते थे, तो ये उनको देखा तो बहुत सुंदर थे गंधर्व, तो थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो गई उनके प्रति, मेंटली आकर्षित हो गई। तो ये भूल गई थोड़ी देर के लिए कि वो मेरे जो पति हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं वो यज्ञ के लिए। तो देर हो गई तो जब वो लेके गई वापस रेणुका, तो बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने पहचान लिया कि ये क्या, ये तो अशुद्ध हो गया इसका मन, गंधर्व के प्रति आकर्षित हो गई है। तो उन्होंने उसको कहा, अपने बेटे को कहा, उनके परशुराम के अलावा भी बेटे थे जिन्होंने, गला काट दो इसका, एक कलंकनी उल्टा गला काट दो इसका, दूसरे के बारे में सोचती है। देखो वो जमाना था, आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है कि नहीं। एक छोटा सा जोक सुनाऊं आपको, आज के समाज की बात है, वो समाज था और आज का समाज देखो। बॉस आता है सेक्रेटरी के पास, गोवा के लिए 2 दिन का ऑफिशियल ट्रिप लग रहा है, तुम चलोगी साथ? वो खुश हो जाती है, हाँ हाँ चलूंगी चलूंगी। तो वो सेक्रेटरी अपने हस्बैंड को फोन करती है कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूं, ऑफिशियल ट्रिप पे जा रही हूं मैं। वो हस्बैंड भी खुश हो जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है कि 2 दिन के लिए मेरी पत्नी जा रही है तो हम भी मिलते हैं। वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो किसी को पढ़ा रही होती है, बच्चे को, टीचर होती है, वो पढ़ा रही होती है बच्चे को। तो कहती है अब 2 दिन की छुट्टियां तुम्हारी, 2 दिन की छुट्टियां, वो जाना पड़ रहा है मुझे। वो भी खुश हो जाती है, जो लड़की है वो खुश हो जाती है। वो पापा को फोन करती है, पापा मैडम ने छुट्टी दे दी है 2 दिन के लिए छुट्टी, हम कहीं घूमने चलेंगे पापा। पापा कौन है उसका? वही बॉस, वो बॉस उसका पापा है। तो बॉस सेक्रेटरी को कहता है नो कैंसल हो गया ट्रिप। वो अपने हस्बैंड को फोन करते मैं नहीं जा रही, ट्रिप कैंसल हो गया है। वो हस्बैंड उसको फोन करता है टीचर को, हम जा नहीं रहे, कैंसल हो गया। और टीचर इस बच्चे को फोन करते हैं, 2 दिन की छुट्टियां नहीं है, मैं पढ़ाने आ रही हूं। सर्कल समझ गए आप, ये रिपीट हो जाता सर्कल। ये आज का हाल है, और वो था जमाना कि उसने एक सेकंड के लिए सोचा, वो चित्रगंध वो गंधर्व जो था उसके बारे में सोचा, वो पता भी लग गया, आजकल तो पता भी नहीं लगता, उसको पता लग गया ये एडल्टरी करके आ रही है, काट दो सिर काट दो उल्टा। कोई लड़का नहीं अपनी मां का सिर काटने को तैयार हो, मां का सिर काट दो। परशुराम आए जंगल से, परशुराम जंगल में गए थे, परशुराम जंगल से आए और आते उन सबसे छोटे थे, जन्मादग्नि ने कहा मां का गला काट दो, आओ देखा ना, आओ गला काट दिया। अब इन सारे भाइयों का भी गला काट दो, ये भी दुष्ट है, मेरा कहना नहीं मानते, उनका भी गला काट दिया। लेकिन हमें नकल नहीं करनी हमारे, वो देखो वो लोगों का अंतर देखो, हम तो कहां है, हमारे ہم نے اپنی پوزیشن بھی تو دیکھنی ہے نا, ہم تو اسی سماج میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ واٹس ایپ یہ سب چکر چلتے ہیں, وہ سماج دوسرا تھا. کیونکہ وہ جانتے تھے, پرشورام جانتے تھے کہ جو میرے پتا ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پتا جی بڑے خوش ہو گئے, میرا بیٹا اتنا آگے کاری ہے, بہت خوش ہو گئے. بیٹا کیا چاہتا ہے تو, کیا چاہیے تجھے, مانگ کیا چاہیے, بہت خوش ہوتے رہتے, کیا چاہیے کیا چاہیے, بولو کیا چاہیے. تو پتا جی نے جب ایسے بولا تو پرشورام جی کہتے ہیں پتا جی سب سے پہلے تو یہ ماتا جی کو زندہ کر دو, اس میں شکتی تھی وہ جانتا تھا یہ, اور ساتھ میں بھائیوں کو بھی زندہ کر دو, ہے کہ نہیں. پتا کا ہردے بھی جینت لیا اور کچھ نقصان بھی نہیں ہوا, اور یہ بھی ساتھ میں مانگ لیا. دیکھو ان کو یہ کبھی پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں ان کا گلا کاٹا ہے, ایک تو سین خراب ہو جائے گا, کبھی بھی میرا ریلیشن نہیں بن پائے گا. پتا جی نے کہا یہ بھی ان کو نہیں پتا لگے گا کہ تم نے گلا کاٹا تھا ان کا. تو وہ سماج تھا, اور پروبھا جی اسی سماج کو دوبارہ ستھاپت کرنا چاہتے ہیں. کاریہ کٹھن ہے لیکن بھگوان کی کرپا سے سب کچھ ہوتا ہے. شیلا پروبھا جی جب گئے امریکہ ہیں تو جب دیکھا تو پروبھا جی حیران ہو گئے. پروبھا جی کہتے ہیں ہے بھگوان مجھے اس بھیڑ جنگل میں کہاں لے آئے ہو آپ, کیوں لائے ہو مجھے, یہ رجوگن تموگن سے گرست لوگ میرا کیا سنیں گے, یہ کیا بات سنیں گے. لیکن پھر کہتے ہیں آپ لائے ہو تو کچھ نہ کچھ پرپز تو ہوگا. تو ٹھیک ہے جتنا نچانا چاہتے ہو نچاؤ, میں تو آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوں, نچاؤ جتنا نچانا چاہتے ہو نچاؤ. تو اس طرح سے جب ہم بھگوان کو سمرپت ہوتے ہیں تو کئی ادبھت کاریہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پھر جو ہے جنمادگنی کے یہ بیٹا ہوتا ہے یہ پرشورام جی, اور ابھی وہی بات چل رہی ہے کہ کیسے جو ہے یہ پرشورام جو ہے آگے چل کے یہ ماریں گے. اور پروبھا جی تاتپریہ یہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی یہ جو سماج میں کرشنا کانشیسنس کا پرچار کرنا ہے, کیونکہ کرشنا کانشیس لوگ ہوں گے تبھی تو کرشنا کانشیس لیڈر آئیں گے. آپ کو اگر درشٹی نہیں ہے کہ کون سا ویکتی اچھا ہے تو کیسے چنو گے آپ, ہے نا. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ویکتی کرشنا کانشیس ہے, کون ویکتی کم سے کم چار نیموں کا پالن کر رہا ہے, کون ہے جو میٹ نہیں کھاتا, کون ہے جو شراب نہیں پیتا. ایسے لوگوں کو چن کے ہمیں ووٹ دینا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے ایسا بھی پریاس ہمیں کرنا چاہیے کہ کوئی ڈیووٹی بھی جو ہے وہ بھی جو جس میں یہ ہے جس میں یہ گن ہیں ان کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے. شیلا پروبھا جی نے شروع میں ایسے بنائی بھی, لوگوں نے اپنی ایک وہ بنایا. تو ابھی ہم دوبارہ پریاس کرنا چاہیے کیونکہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم سچ بتا رہے ہیں ہم رہ نہیں پائیں گے, کیونکہ سماج کا اتنی بری طرح سے ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے کہ آپ ابھی سمجھ نہیں پا رہے, کیونکہ غلط انفارمیشن غلط چیزیں جو ہیں پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں. پاپ کرنے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے نا, کرموں کے بارے میں ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ آپ جو کرم کرتے ہو اس کا آپ کو دنڈ بھوگنا ہی پڑے گا. کوئی بھی ہو کوئی نہیں بچا. راجہ دشرتھ کتنے بڑے تھے. ماتا جی آپ باتیں کیوں کر رہے ہو, باتیں کیوں کر رہے ہو, آپ کو بھی آگے بلانا پڑے گا, پھر یہاں بٹھا دوں گا آپ کو سب کو. آپ باتیں کیوں کر رہے ہو, یا تو ہمیں بتاؤ کیا بات کر رہے تھے. پھر پبلک میں پرائیویٹ بات, یہ پبلک ہے, پبلک میں پرائیویٹ بات نہیں, کیونکہ آپ بتا نہیں رہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ پرائیویٹ بات تھی نا, نہیں تو آپ بتا دیتے کہ پربھو جی یہ بات کر رہے تھے. پبلک میں تو سب کی جو ہت کی بات ہے وہ کرنی ہے ہمیں, ہے نا. تھینک یو ماتا جی. تو ابھی سمے بھی آگے بڑھ گیا ہے, حالانکہ چاہو تو ہم تو کلاس آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے پرساد بھی لینا ہے اور ساتھ میں اور بھی کاریہ کرنے ہیں. تو بہت بہت دھنیواد آپ لوگوں کا, بہت بہت دھنیواد, دھیان سے سنا آپ نے اور مجھے موقع دیا بولنے کا, اور کوئی کسی طرح کی کوئی ترٹی ہوئی ہو تو معاف کریے گا. ہری کرشنا, کسی کا کوئی پرشن ہے تو ایک دو منٹ چرچا ہو سکتی ہے, نو تو بچ گئے ویسے. اوکے اوکے ہاں इनको माइक दो, दो मिनट तीन मिनट चल सकता है ना।
हरे कृष्ण रोजी, इसमें इस प्रसंग में जामद अग्नि ने जो बहुत सीवियर पनिशमेंट दिया उनको, अपनी वाइफ को, तो ये कहाँ तक ठीक है इतना, क्योंकि एक ब्राह्मण का गुण होता है क्षमा कर देना, वो भी नहीं किया, और पहले भी आपने बताया कि धर्म ने आके उनकी टेस्ट भी लिया था कि उनको क्रोध नहीं आता, तो एकदम से इतना क्रोध आ गया, तो इसका कुछ अलग अभिप्राय था या क्या था एग्जैक्टली, इसको कैसे समझना चाहिए?
ये सोचने की बात है, मैंने सोचा नहीं इस पॉइंट में। अब कह तो ठीक रहे हो, सोचना पड़ेगा। कोई और? आप प्रभु जी, आप उत्तर दे सकते हैं इनका, क्या पूछ रहे हैं? बोलो दोबारा बताओ।
प्रश्न ये था प्रभु जी कि जामद अग्नि ने अपनी वाइफ को इतना सीवियर पनिशमेंट दिया उस टाइम पे, तो ये कहाँ तक ठीक था, क्योंकि एक ब्राह्मण का गुण होता है क्षमा कर देना, और प्रभु जी ने एक लीला और बताई कि धर्म आके उनका टेस्ट भी लेते हैं पहले, कि उनको क्रोध नहीं आता, लेकिन एकदम से इतना क्रोध भी आ गया, तो कुछ इसके पीछे अभिप्राय कुछ अलग है या फिर कैसे समझना चाहिए?
हरे कृष्ण, जैसे ब्राह्मण को समाज में गुरु माना जाता है, तो सर्वप्रथम कोई भी पते, पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने किसी 16 अध्याय के किसी तात्पर्य में लिखा है कि किसी भी पति का पत्नी के प्रति कुछ अपना सौहार्द होता है, उसी प्रकार जैसे समाज का गुरु ब्राह्मण को माना जाता है, तो परसों जमदग्नि ने देखे अपने योग बल से कि हमारी ही पत्नी का झुकाव कहीं और है, तो हम शिक्षा के उद्देश्य दे सकते हैं कि जब हम अपने अर्धांगिनी अर्थात अपने संगिनी को हम नहीं सुधार सकते हैं, तो हम और किसी को शिक्षा देने लायक समाज में कैसे रहेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने ब्राह्मण का गुण वहाँ भी स्थापित उन्होंने किया कि नहीं, शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का उन्होंने किया कि अगर ये सुधर जाते हैं या इनको हम कुछ दंडित करते हैं तो समाज हमें कुछ मतलब उत्प्रेरित नहीं करेगा, कलंकित नहीं करेगा। और इसके पीछे कुछ और भी उद्देश्य है कि जैसे ये भी शिक्षा देना था कि जैसे परशुराम जी के जो चरित्र है उनके मतलब प्रति यह है कि परशुराम जी को विप्रभु इनका आदेश था जमदग्नि जी का कि पुत्र किस प्रकार का होना चाहिए, यह भी शिक्षा देना था समाज के अंदर, और अन्य पुत्रों ने उनके वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन परशुराम जी की योग्यता एक अलग थी, वो समझ भगवान के राम अवतार कहे जाते हैं क्योंकि भगवान के अन्य अवतारों में इनकी गिनती है, तो लीला के माध्यम से इन्होंने यह भी सिखाया परशुराम जी भी अपने चरित्र से कि पिता के वाक्य को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, और यह अपने पिता के गुण को भी जानते थे परशुराम जी कि पिता सर्वसमर्थ हैं, हम कुछ भी अगर या इनके आदेश का पालन करते हैं तो मेरे अपना भी पिता का सौहार्द दिखाएंगे, तो जमदग्नि जी ने दिखाया भी, जैसे परशुराम जी बात को मान लिए, उनके आज्ञा को मान लिए, तो आज्ञा को पूरी होने के बाद उन्होंने इस प्रकार का उन्हें मतलब वचन दिया कि कुछ मांगो, तो उन्होंने वचन के रूप में मांगा कि मैं जो कार्य किया हूँ मेरी माँ भी जीवित हो जाए, मेरे भाई मेरे किए हुए कृत्य को याद न रखें वो भूल जाए, यह इसके पीछे इस प्रकार की लीला है थी।
वेरी गुड, थैंक यू। जैसे मुझे इसी इनके उससे बात याद आ रही है कि जैसे भगवान राम ने भी तो सीता को जो है वन में भेज दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, है ना, तो ये भी तो उनका तो छोटा सा क्या उनका अपराध था, कोई अपराध भी नहीं था कि धोबी ने कह दिया, है ना, लेकिन प्रजा के लिए ये दिखाने के लिए कि हम प्रजा मेरे लिए प्रिय है, इसलिए देखो एक धोबी के कहने पे उनको कितना बड़ा दंड दे दिया। तो इसी तरह से ये बिल्कुल ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आश्रितों को अपने जो हैं उनको ज़्यादा दंडित करते हैं। मैंने अपने गुरु महाराज में ये बात देखी है, जो उनके अपने शिष्य हैं उनको ऊपर ज़्यादा वो हैवी रहते हैं, जो बाकी हैं जो उनसे इतने नज़दीक नहीं हैं उनके ऊपर लीनियंट रहते हैं, उनको ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि लोग कहेंगे ये तो आपके इतने नज़दीक है ये देखो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसको ज़्यादा दंडित होते हैं वो, मैंने देखा है। ये अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। हाँ 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 जी हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी
रामचंद्र जी को गोपी ने बता दिया कि वो वहां रह के आई है हरे कृष्ण, तो उसकी वजह से रामचंद्र जी ने सीता जी को वन में भेज दिया। पर राजा दशरथ की भी तीन बीवियां थी, यहाँ परशुराम जी के पिताजी ने अपनी पत्नी को सिर्फ संदेह से या अपने मनोबल से देखा, योग शक्ति से, कि उसने उसके बारे में सोचा। उस समय में देखा जाता है कि कितनी नागरिक, कितने राजा जिनकी हजारों रानियां तक हुआ करती थी, उनके लिए कोई भाव नहीं। इसका मतलब वो पुरुष प्रधान माना गया, दंड तो उनके लिए भी उतना मायने है।
क्या क्या क्या?
जैसे प्रभु पत्नी ने सिर्फ सोचा उनके गांधर्व के बारे में, तो पिता ने कहा कि इनका गला काट दो क्योंकि ये कुछ मेरे अलावा कुछ और सोच रही है। पर कितने ऋषि मुनि ऐसे हुए, कितने राजा नागरिक हुए जिनकी कितनी रानियां, उनके मन में भी तो भाव आया, तो दंड के
नहीं, लेकिन हम इस चीज को कंफ्यूज नहीं करें, हम कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि हम कलयुग में है ना। कलयुग में जो शादी है वो अलग कारण से होती है। कलयुग में शादी का मतलब है सेंस ग्रेटिफिकेशन, तब है ये भाव नहीं हुआ करता था। नहीं तो वो सत्यवती की माँ क्यों कह रही है कि मुझे भी बच्चा दे दो, अपने दामाद को कह रही है मुझे बच्चा दे दो, ये तो क्या है, ये अच्छी बात है क्या? आजकल के जमाने में तो ये कितनी गंदी बात है। मतलब ये आज के जमाने तो वो जमाना दूसरा था, वहां यही तो है ना। अभी हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अभी हम इस चीज को अलग अलग नहीं कर पा रहे। जो जो सेक्स है वो सिर्फ संतानों उत्पत्ति के लिए है, बस खत्म, सीन खत्म। आपको एक बात बताएं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। हमारे एक महाराज हैं गौर गोविंद महाराज, अब तो नहीं रहे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो महाराज बनने से पहले, संन्यास लेने से पहले वो शादीशुदा थे और उनके 7 बच्चे थे और वो अपनी पत्नी से 7 बार मिले। समझ आई बात? ये समझो आप, तब आपको ये समझ आएंगे लीले। यहां क्या वातावरण है, यहां तो एक बच्चा होगा और पत्नी से मिलेंगे 700 बार। गलत कह रहा हूं?
नहीं, ठीक है।
तो सीन अलग, वहां सीन अलग था। जो जिसकी चित्रकेतु महाराज थे तो उनकी 1 करोड़ रानियां थी। चित्रकेतु महाराज की आप कह रहे हो 1000, 1 करोड़ रानियां थी, भागवतम में वर्णन आता है, और सारी की सारी बांझ। अब इसको क्या कहोगे आप, ये क्या है? और उनको पुत्रों पुत्र चाहिए था उनको, 1 करोड़ रानियां उनको सुहाती नहीं थी, डिप्रेस थे, डिप्रेशन में थे वो, उनको डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी। सच, अंगिरा ऋषि आए, दोनों ने उनका डिप्रेशन दूर किया, घोर डिप्रेशन में, डीप डिप्रेशन में चले गए थे 1 करोड़ रानियां होते हुए। 1 करोड़ रानियां तो आती नहीं थी। आप तो कह रहे हो 3 रानियां थी दशरथ की, 3 रानियां क्या है, यहां तो भागवतम में वर्णन है चित्रकेतु राजा जो थे 1 करोड़ रानियों के साथ रहते थे, सारी की सारी बांझ। दशरथ की भी रानियां तो उनको भी तो एकदम ऐसे थोड़ा पुत्र। तो वहां पे उस समय संतान उत्पत्ति का इंपॉर्टेंस दिया, इसीलिए कई इंस्टेंस आते हैं जो हमें लगते हैं ये क्या, ये तो एडल्टरी है। पराशर मुनि थे, सत्यवती को मिले, शादी भी नहीं हुई थी, वो वेद व्यास जी को जन्म दे दिया। क्यों? वो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा मुहूर्त है, इस समय अगर कोई बालक आएगा तो भगवान का अवतार होगा। वो सत्यवती नजर आई, सत्यवती और पराशर मिले और वेद व्यास जी का जन्म हो गया। तो संतानोत्पत्ति का महत्व था, इस चीज का महत्व नहीं था। आजकल तो उल्टा है, बिल्कुल सीन ही उल्टा है आजकल, तो क्या समझेंगे हम। इसलिए तो कलयुग है। अगर आप डेजर्ट में अगर कोई आपको वर्णन करे कि जी ऐसा होता है, पेड़ ही पेड़ होते हैं सब जगह, पानी के झरने बह रहे होते हैं, पानी पानी होता है, ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, तरह तरह के पेड़ होते हैं, क्या समझ आएगा? आपने डेजर्ट के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। आप कहेंगे ये पागलों वाली बातें कर रहे हैं, यहाँ तो एक पेड़ कभी नजर नहीं आता, ये तो कह रहा है कि पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो ये हाल हमारा है, हम कलयुग में रह के हम ये जो वर्णन है ये दूसरे युगों का है, सतयुग का और दूसरे युगों का, सतयुग का वर्णन।
महाराज जी मेन इंपॉर्टेंस पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति था, प्रेम भाव नहीं।
प्रेम भाव
एक्चुअल में पुत्र प्राप्ति जैसे बता रहे हैं कि संतान प्राप्ति का मेन कंसर्न था, चाहे वो हजारों रानी है क्यों ना हो, पर संतान प्राप्ति होनी चाहिए। प्रेम भाव एक अलग चीज हो गई जो किसी के मन में भी उत्पन्न हो सकती है, पति पत्नी में भी और प्रेमी और प्रेमिका में भी, पर अगर वो
हमें कहाँ बताया प्रेम ये तो एक प्रेम थोड़ा है तो जी, आप काम को हमें ओहो आपने सोना देखा ही नहीं है, आप लोहे को ही सोना सोना कह रहे हो तो क्या करें, पहले सोना देखो ना, प्रेम कहाँ देखा है आपने, प्रेम कहाँ देखा है, प्रेम में मीरा ने देखा था प्रेम, प्रेम में तो पागल हो जाता आदमी, ये प्रेम थोड़ा है, ये तो लस्त है, काम है, ऐसा प्रेम होता है? आज शादी हुई, कल कोर्ट में खड़े हैं, कितने डाइवोर्स केस चल रहे हैं पता है आपको?
बिल्कुल बिल्कुल सही है।
तो ये प्रेम होता है क्या? ऐसा थोड़ा प्रेम होता है
जी प्रभु जी, मेरा
प्रेम तो है ही नहीं।
मेरा कहने का मतलब ये है, आपने जैसे बताया कि उन्होंने बोला कि काट दो इसका गला क्योंकि इसने दूसरे के बारे में सोचा,
तो ये भी तो प्रेम का एक पार्ट है, आप समझ, यही तो कह रहा हूँ, हमें पता नहीं प्रेम क्या होता है, ये भी एक प्रेम का पार्ट है।
और ये पत्नी अगर ऐसा सोचे पति के बारे में, अगर वो किसी और को ब्याह के लेकर आता है तो प्रेम का भाव तो उसके लिए भी है।
ओहो आप बराबर थोड़ा कर सकते हो, पत्नी सोचे मेरा पति प्रेग्नेंट हो जाए, हो जाएगा
जी? ये तो लॉजिक ही नहीं है ना।
लॉजिक तो है, ये भगवान ने अलग अलग बनाया है ना, पुरुष को और स्त्री को, यही तो लॉजिक है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा दिमाग खराब कर दिया है सारे प्रोपागेंडा ने, भगवान ने ही पति को पत्नी को अलग अलग बनाया है, मतलब औरत को और पुरुष को अलग अलग बनाया, ये हमें समझना है।
तो इनकी विचारधारा भी बिल्कुल अलग होगी, इनकी सोच भी अलग होगी, पुरुष सोचेगा कि पत्नी मेरे किसी के बारे में ना सोचे, पर पुरुष सोच सकता है, पर पत्नी ऐसा ना सोचे कि मेरे पुरुष कुछ भी सोचे।
आप अब अपने दिमाग से सोच रहे हो तो मैं क्या करूं, आप पहले आओ, एक दिन में सब चीजें नहीं समझ में आएंगी, चैंटिंग करो, चैंटिंग करते हैं आप, जब करते हैं, वेरी गुड, कितनी माला करते हैं?
16 तो नहीं होती है प्रभु जी, बट
वेरी गुड, बढ़ाओ, समझो, एक दिन में नहीं आएगा समझ, लेकिन ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये बात आप गलत नहीं कह रहे, डिग्रेडेशन पुरुषों का भी हुआ है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन स्त्री का अपना धर्म है, पुरुष का अलग, पुरुष भी नहीं अपना धर्म निभा रहे, वो बात अलग है, आप गलत नहीं कह रहे, मैं लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब दोनों का व्यवहार अलग अलग है, दोनों के धर्म अलग अलग है, पुरुष को अपना धर्म निभाना है, स्त्री को अपना धर्म निभाना है, ये बात है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर पुरुष धर्म नहीं निभा रहा तो स्त्री भी ना निभाए, मतलब हो तो रहा है ऐसा, और होता भी है, लेकिन वो भी फिर नरक में जाएगी, वो भी नरक में जा रहे हैं, पुरुष तो जा ही रहे हैं नरक में, पुरुष अपना धर्म नहीं निभा रहे, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते, पुरुष का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, ये पॉइंट है, पॉइंट ये है
जी। दोबारा बैठूंगा इसके आपके साथ, आपसे सीखूंगा थोड़ा सा, समझूंगा इस चीज़ को,
अभी तक नहीं समझ आया
जी, और डिटेल में समझूंगा।
ओके थैंक यू,
संदेह लेके जाऊंगा तो भी कन्फ्यूज
नहीं, नहीं थैंक यू। क्या नाम है आपका?
जगन्नाथ दास।
जगन्नाथ दास, तो सारे भगवान के भक्त हैं, जगन्नाथ दास, नहीं नहीं थैंक यू, आपका जो है ये संदेह है हमारे में, संदेह दूर करने चाहिए लेकिन समय लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। शीला बहुबाद की।